जब जीव भक्त अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर आ जाता है तो भक्ति के प्रति उसमें निष्ठा हो जाती है। निष्ठ स्थ मतलब कि स्थिर रहना, निष्ठा मतलब नितराम आश्रय, एक जगह टिक जाता है, वह शायद हिलता डुलता नहीं है, उसको निष्ठा कहते हैं। और जब निष्ठा हो जाती है और भजन क्रिया प्रारंभ रहता है तो भक्ति के प्रति रुचि हो जाती है, भक्ति को करने में उसे आनंद आने लगता है। प्रारंभ में जप इत्यादि करने में, भगवान के श्रवण कीर्तन करने में आनंद की उपलब्धि, आनंद से मतलब अच्छा नहीं लगता है, रुचि नहीं होता है, लेकिन ऐसा कैसे रुचि हो जाती है। रुचि मतलब भक्ति में रुचि, भक्ति के जो अंग हैं श्रवण कीर्तन उसमें वो अच्छा लगने लगता है, रुचि हो जाती है। और तब इसके बाद रुचि के बाद एक इसे उच्चतर स्टेज है, उसे आसक्ति कहते हैं। रुचि में भक्ति के जो साधन हैं उसके प्रति वह आस्वादन करने लगता, अच्छा होने लगता है। और आसक्ति में थोड़ा सा इतना देर भगवान अच्छे लगने लगते हैं, भगवान के प्रति मन स्वाभाविक उनके रूप के प्रति, गुण के प्रति, लीला के प्रति आकर्षित, उनका रूप हृदय में बसने लगता है, उसे आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति के बाद भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, भाव, और भाव के बाद प्रेम होता है। रूप गोस्वामी जी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में सबकी बढ़िया से परिभाषा बताए हैं, तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेना चाहते हैं। हम बार बार सुनते हैं कि साधन भक्ति, सुनते हैं साधन भक्ति का आचरण करना चाहिए, इसके बाद भाव भक्ति है, इसके बाद प्रेम भक्ति है, तो यह सब समान रूप से साधन भक्ति क्या है पूछा जाता है। साधन भक्ति हम करते हैं, साधन भक्ति मैंने क्या करते हैं, साधन भक्ति का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो रूप गोस्वामी साधन भक्ति की परिभाषा बताते हैं। कृति साध्या भवेत साध्य भावाशा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। इसका अर्थ है, समान अर्थ है कि साधन भक्ति उस भक्ति को कहते हैं जिस भक्ति का उत्पादन इंद्रियों से होता है। कृति, कृति माने इंद्रियों, जिस भक्ति का आचरण हम लोग अपनी इंद्रियों से करते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं विशेषकर पांच इंद्रियां और मन, इसके बाद 10 इंद्रियां और मन, तो इसके द्वारा मन को भी एक इंद्रिय माना गया है, सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है। तो जिस भक्ति का उत्पादन इंद्रिय व्यापार से होता है और जो साधन भक्ति साध्य भक्ति का जन्म देती है, साधन भक्ति की दो, इसका व्यापार, इसका उत्पादन हम लोग इसका करते हैं अपने इंद्रियों से, और इसमें एक विशेषता होती है कि जो साधन भक्ति का आचरण करता है तो उसके उसे भाव साध्य भक्ति की प्राप्ति होती है। एक साधन भक्ति और एक साध्य भक्ति, साधन समझते हम लोग कर रहे हैं, एक प्राप्तव्य जो भक्ति है, साध्य भक्ति है जिसको हम करना चाहते हैं वह। तो साधन भक्ति का उत्पादन इंद्रिय व्यापार से, इंद्रियों से हम करते हैं और उसमें शक्ति होती है कोई साध्य भक्ति का वह जन्म देती है। तो साध्य क्या है, जिसके हम साधना भक्ति करके जिस साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं वह साध्य क्या है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस जो आकर्षण है उसको प्रकट कर देना साध्य है, वही हम लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है जो भगवान के प्रति जो आकर्षण है साध्य भक्ति है, प्रत्येक जीव के हृदय में सनातन रूप से विद्यमान है, नष्ट नहीं होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभुनय श्रवण आदि शुद्ध चीते करय उदय। प्रत्येक व्यक्ति, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में स्वाभाविक शुद्ध कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रति आकर्षण न हो, ऐसा नहीं, सबके हृदय में है, परंतु वह सुप्तावस्था में है, डॉर्मेंट कंडीशन में है। भक्ति हम लोग साधन करते हैं, साधन भक्ति को करते हैं तो साध्य भक्ति, भाव भक्ति अथवा प्रेम भक्ति उदित हो जाती है। तो यह साधन भक्ति। इसके बाद रूप गोस्वामी जी भाव भक्ति की परिभाषा बताते हैं। ये तो साधन भक्ति, साधन संक्षेप में जान लीजिए, साधन भक्ति उस भक्ति को कहते हैं जिसका उपादन, जिसका साधन इंद्रियों से, मन सहित अपने इंद्रियों से किया जाता है, और जो भाव भक्ति का को जन्म देती है जो भक्ति, वह साधन भक्ति है। तो भाव भक्ति क्या है? भाव भक्ति की परिभाषा बताते हुए रूप गोस्वामी जी बताते हैं, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चितमाश्रेण्य कृत स्वभाव उच्यते। इसका अर्थ है, संक्षेप में यह अर्थ है कि यदि भगवान का प्रेम सूर्य है, भगवान के प्रेम की तुलना, कृष्ण प्रेम की तुलना सूर्य से किया जाए, तो भाव उसकी किरण है, सूर्य है, सूर्य की रोशनी, सूर्य ग्लोब है। यदि वह प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, तो उसमें जो किरणें निकल रही हैं वह भाव है, किरण रेज रुचि, उसमें जो रेज निकलता है उसको भाव कहते हैं। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा यह भगवान की लादनी शक्ति का, अतरंगा शक्ति का एक प्रकट विशिष्ट एस्पेक्ट है भाव भक्ति। और वह यदि प्रेम को सूर्य की उपमा दी जाए तो सूर्य की जो किरणें होती हैं उसे भाव की उपमा दे जाती है। रुचिभिश्चितमाश्रेण्य कृत्सव भाव उच्यते। और इसकी भाव भक्ति की एक विशेषता है कि वह जिस साधक के हृदय में भक्ति आती है तो रुचि के द्वारा भक्ति के प्रति उसको आनंद आने लगता है, उस आनंद के कारण उसका हृदय सॉफ्ट कर देता है, उसको नरम कर देता है। तो यहाँ जो सॉफ्ट हम लोग कर रहे हैं, नरम कोमल, यह गुड सेंस में है। हम लोग सुबह में चर्चा कर रहे थे कि कोमल श्रद्धा और एक कठिन श्रद्धा था, प्रौढ़ श्रद्धा, तो वहाँ वो गुड सेंस में नहीं थी, कोमल मतलब इन्फीरियर। लेकिन यहाँ जो हृदय हमारा कठिन है उसको जो सॉफ्ट करती है, रुचिभिश्चितमाश्रेण्य, रुचि मतलब टेस्ट, भाव भक्ति के स्तर पर उसे टेस्ट होने लगता है, और टेस्ट जो होने लगता है, आस्वादन भक्ति का होने लगता है, तो हृदय सॉफ्ट बन जाता है, आश्रेण्य मश्रेण मश्रेण उसको सॉफ्ट बना देता है। मश्रेण्य का जैसे आप, जैसे हम लोग चावल खाते हैं तो उसमें दाल डालते हैं तो उसको मिसना कहते हैं, दोनों मिला देते हैं सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, रोटी आप लोग खाते हैं तो दूध के साथ चाहे किसी लिक्विड के साथ खाते हैं, तो वह रुचिभिश्चितमाश्रेण्य कृत्सव भाव उच्यते। फिर उसी को रूप गोस्वामी जी फिर से बहुत बढ़िया से बताते हैं, प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते। प्रेम की, कृष्ण प्रेम की जो पूर्वावस्था है उसको भाव कहते हैं। और इसकी में क्या अवस्था है, इसमें जो सात्विक गुण होते हैं, सात्विक अष्ट विकार होते हैं, वो अल्प मात्रा में होते हैं, अश्रु होना, भक्त के आंखों से आंसू प्रेम के कारण उत्पन्न होने लगता है, उसके रोमांच होता है, तो यह अल्प मात्रा में होते हैं भाव के स्तर पर। और यही जब परिपक्व होता है तो उसको प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी जी प्रकारांतर से प्रेम की पूर्वावस्था को भाव कहते हैं, और भाव का जो परिपक्व अवस्था है उसे प्रेम कहते हैं। तो भाव की भी संक्षेप रूप में, एक भाव में और एडिशनल क्या हो जाता है, सम्यक मश्रेणतो अस्य ममत्वातिशयांकितः भाव स्वयं सान्द्रात्मा बुधय प्रेमा निगद्यते। जब हृदय पूर्ण रूप से स्निग्ध हो जाता है भगवान के प्रति, उसमें बहाव होने लगता है, भगवान की लीला को सुनकर, गुण को सुनकर हृदय में एक प्रकार का तरलता आ जाती है, प्रवाहित रूप से तब जाने लगता है, सम्यक रूप से हृदय जब हमारा कोमल हो जाता है, और इसके अतिरिक्त कृष्ण के प्रति ममत्व हो जाता है, कृष्ण मेरे हैं चाहे मैं कृष्ण का हूँ, इसको ममत्व कहते हैं। से माँ यशोदा की अभिमति थी चाहे है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, इसको ममत्व कहते हैं, मेरा कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, मेरा जिसमें आ जाता है। कृष्ण मेरे मित्र हैं, तो ममत्व इसमें बढ़ जाता है। तो भाव की अपेक्षा प्रेम में क्या हो जाता है कि हमारा हृदय ज़्यादा स्निग्ध हो जाता है, और इसके प्रति कृष्ण के प्रति हमारी ममता, ममता का समझते हैं ना, ममत मेरापन, कृष्ण मेरे हैं बढ़ जाता है। भाव सएव सान्द्रात्मा, फिर से कहते हैं भाव ही जब वह और सान्द्र हो जाता है, घनीभूत हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो विद्वान लोग बुद्ध है, बड़े बड़े जो रस शास्त्र के ज्ञाता विद्वान हैं, उसको प्रेम कहते हैं, भाव के परिपक्व अवस्था को प्रेम कहते हैं। यह परिभाषा देने के बाद रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि इस प्रेम की जिसे प्राप्ति करनी है, तो प्रेम की प्राप्ति में उसे कुछ स्टेजों से, कुछ सोपानों से, कुछ सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। प्रायः आदर श्रद्धा, तो उसमें प्रथम श्रद्धा है। श्रद्धा का सामान्य अर्थ यही है कि व्यक्ति के मन में विश्वास हो जाता है कि कृष्ण भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, और यदि हमने कृष्ण भक्ति कर लिया तो सब कुछ हमने अपने जीवन की सफलता प्राप्त कर ली। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा की विशेष परिभाषा चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को, चैतन्य महापुरुष चैतन्य महापुरुष ही बताया, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़, श्रद्धा का अर्थ है सुदृढ़ विश्वास कृष्ण भक्ति कहले। यदि भगवान कोई भक्ति करता है तो सब सर्व कृत 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 हो गया, अब उसको तो दूसरा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण भक्ति अपने यह विश्वास हो जाए तो उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा के बाद जो स्टेज आता है उसको साधु संघ कहते हैं। तो हम इस पर के आठ जो स्टेज हैं, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि साधका नाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भाव भावे भवित क्रम। किसी के हृदय में प्रेम की उत्पत्ति होती है तो प्रायः यही क्रम होता है, समझे, ऐसा नहीं होता है कि पहले किसी में प्रेम हो गया इसके बाद वो साधु संग करेगा, अथवा पहले साधु संग हो गया इसके बाद उसमें श्रद्धा आएगी, अथवा निष्ठा के स्तर पर आ गया तब वह लगा भजन करने के लिए, यह नहीं होता है प्रायः। कभी कभी ऐसे होता है, रूप गोस्वामी उसकी चर्चा करते हैं, कोई विशिष्ट भक्त है, भगवान का प्रेमी भक्त है, अथवा भगवान अपनी पूरी वीटो पावर लगाकर, शक्ति लगाकर चाहते हैं कि इस भक्त को पूरा कृष्ण प्रेम मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए क्रम की जरूरत नहीं है, उसे सद्य है। जैसे आप जानते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से पार कर रहे थे तो हिंसक जंतु थे, तो उन लोगों को प्रेम के स्तर पर पहुंचा दिया, वो लोग इस क्रम से नहीं गुजरे, एकदम मुलाकात हुई और तुरंत नेक्स्ट क्षण शुद्ध भक्त थे। तो यह बहुत रेयर होता है, इसके विषय में समझना, किसी को हो सकता है लेकिन प्रायः जो कहते हैं कि प्रादुर्भावे भवेत क्रम, यह क्रम यही सीक्वेंस में आता है, किसी कृष्ण प्रेम आता है तो उसको इन स्टेजों से, इन स्तरों से गुजरना पड़ता है। प्रायः, प्रायः मतलब ऑलमोस्ट, कभी कभी सैकड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों में, अथवा कभी कभी कोई एक महात्मा होते हैं, उस भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, और चाहते हैं कि नहीं इस जीव को भक्ति मिलनी चाहिए, शुद्ध प्रेम मिलना चाहिए, तो जल्द अपने पूरी जैसे भीटो पावर लगा कर उसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी साधका नाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे, प्रेमणः प्रादुर्भावे, किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा तो उसके लिए भवेत क्रम, यही सीक्वेंस क्रम कहते हैं ना, वन आफ्टर वन, तो इसी क्रम में होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा आधार है। जैसे हम लोग कोई खेती करता है तो उसे लैंड होना चाहिए, उसी में कोई खेती कर सकता है। तो हमारे हृदय में यदि श्रद्धा नहीं है तो उसमें भक्ति का बीज का बपन नहीं किया जा सकता है। तो मैं, कोई कृषक खेती करना चाहता है, उसके पास बहुत बढ़िया बीज सीड प्राप्त हो, परंतु उसके पास यदि भूमि नहीं है तो कहाँ खेती करेगा, कर नहीं सकता। तो श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा आधार है, तो श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे हम अभी एक टीका पढ़ रहे थे, हम लोग सुबह में थोड़ी चर्चा किए थे कि श्रद्धा कैसे आती है किसी जीव में। तो इसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही बताते हैं कि श्रद्धा किसी भक्ति में कैसे आती है। साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि हो, साधु संग से किसी जीव के हृदय में भक्ति के प्रति श्रद्धा होती है। प्रसन्नता माता जी बता रही थी कि कभी हुआ है, हमको पता नहीं है, अज्ञात रूप से कभी हमें किसी साधु की हमने सेवा की है अथवा कभी सत्संग हुआ है, तो वही कारण होता है हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करने का। और वह श्रद्धा हो जाता है तो वह श्रद्धा ही प्रेरित करता है साधु संग का। तो साधु संग से श्रद्धा होती है। साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि है, भक्ति फले प्रेम है, संसार जाय क्षय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसे अज्ञात सुकृति अथवा अनजान में हमने कुछ कहीं साधु संग हुआ है तभी श्रद्धा भी होती है, ऐसे श्रद्धा नहीं होती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, कुछ लोगों की मान्यता है कि नहीं, कुछ जो पुण्यात्मा है, दान देते हैं, धर्म करते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, ब्रह्मचर्य इत्यादि व्रतों का पालन करते हैं, तो इसे पुण्य होता है और उस पुण्य के प्रभाव से भक्ति के प्रति श्रद्धा होती है। लेकिन वैदिक ग्रंथों में इस बात को निरस्त किया गया है। वो प्रसिद्ध श्लोक जब रामानंद राय जी से और चैतन्य महापुरुष से बातचीत हो रही थी, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ही रामानंद राय जी कहते हैं, उस समय तो भगवान सुन रहे थे, रामानंद राय बोल रहे थे, कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतोपि लभ्यते। साहित्यिक ढंग से बोलते हैं कि यदि आप कहीं बाजार में घूम रहे हैं और कृष्ण रस भाविता मति कहीं बिक रही है, तो चाहे कितना भी महंगा हो, विचार मत कीजिए, हो सकता है बाजार में कौन आउट ऑफ स्टॉक है, खरीद लीजिए। कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम, कहीं भी लब्ध हो, किसी मूल्य पर मिल रहा हो आपको, तो खरीद लेना चाहिए। ये संकोच नहीं कि अरे भाई ये तो महंगा बेच रहा है, नहीं, कोई भी मूल्य चुकाना पड़े आप खरीद लीजिए। तो मूल्य क्या चुकाना होता है, उसका कितना उसका मूल्य होता है, कुछ संकेत कीजिए। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, एक मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा, वह लौल्य। लौल का मतलब ग्रीड, इंटेंस लोभ होना चाहिए कि हमको भक्ति मिलनी चाहिए। जैसे कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिता के सामने रोने लगते हैं कि हमको मिठाई खरीद कर दीजिए ही, उसके बिना वो चैन नहीं, रोने लगते हैं, लौल्य उन्हें चाहिए ही चाहिए, आग्रह होता है। तो लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, उसका एकमात्र मूल्य उसको चुकाना पड़ेगा लौल, उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। और फिर वहीं पर उस श्लोक में राय रामानंद जी कहते हैं, कोटि जन्म सुकृति भी न लभ्यते। एक जन्म की तो बात छोड़ दीजिए, करोड़ों जन्मों का सुकृति आपने कमाया हुआ है, लेकिन उसमें ताकत नहीं है कि वो कृष्ण भक्ति को, कृष्ण प्रेम को दे सके। यह विशेषाधिकार केवल और केवल एक व्यक्ति को दिया, साधुओं को दिया है जो भगवान के भक्त हैं, कि वे किसी के हृदय में भक्ति के बीज का बपन कर सकते हैं। तो यह कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है यदि हम किसी भगवान के भक्त की सेवा करते हैं, तो उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। तो जब श्रद्धा होती है तो दूसरा स्टेज होता है कि उस भक्त को, उस जीव को, उस साधक को साधु संग करना होता है। हम साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, साधु के संग। हम सुबह में चर्चा थोड़ी कर रहे थे, आदो श्रद्धा ततो साधु संग। तो साधु संग की व्याख्या में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भजन रीति की शिक्षा के लिए, भजन कैसे किया जाए, भजन रीति शिक्षा निबंधनम साधु संग। साधु संग मतलब महात्मा के चरणों में जाकर उसे भजन रीति कैसे जप करना है, कैसे माला पकड़ना है, कैसे तिलक करना होता है सीखना पड़ता है ना, भक्ति कैसे की जाती है। तो भजन रीति की शिक्षा साधु से लेनी चाहिए, उसे संग में जाकर। और दूसरा एक दूसरे रीति का, उद्यमे न यत्ने न साधु भी मिलनम, थोड़ा परिश्रम करके काम धाम घर का काम थोड़ा बंद करके साधु के पास हम लोग जाते हैं यह सीखने के लिए कि हमको भक्ति सीखनी है, तो उसको साधु संग कहा जाता है। ऐसे यह दीक्षा भी कोई आपको मिल गया तो अभी साधु संग है, लेकिन उस साधु संघ से सद्य उतना फल नहीं मिल पाता है, तो प्रयत्न करके अपने तरह से जाना उसके पास भजन रीति की शिक्षा के लिए कि हम भजन कैसे करना है। तो यदि साधु संघ किया जाता है तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु संघ की महिमा का वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में, साधु संघ सर्वशास्त्र कह लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अब इस लव बहुत छोटा समय को कहा जाता है, कहीं कहीं लव को एक सेकेंड का जो 11वां हिस्सा होता है, एक सेकेंड को 11 भागों में बांट दीजिए तो कहीं कहीं उतने ही को लव कहा जाता है। एक सेकेंड एक मिनट का मैं कह रहा हूँ, एक सेकेंड का 11वां हिस्सा को लव कहा जाए, कहीं कहीं भी कहा, मैं तात्पर्य उपलक्षण में बहुत थोड़े समय का संग भी लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सभी तरह की सिद्धि साधु का संग हमें प्रदान कर सकता है। यदि लव मात्र से भी छोटा क्षणिक संग भी किसी महात्मा के साथ हो गया तो हमारा हमको सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो जहाँ चैतन्य महापुरुष यह बता रहे थे, यह शिक्षा सनातन गोस्वामी को दे रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु एक बहुत प्रसिद्ध भागवतम का श्लोक कोट किए। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम में 2 बार आया हुआ है, ठीक हूबहू इसी रूप में 2 बार आया हुआ है। एक तो प्रचेताओं के प्रसंग में, महाराज प्राचीन बरही के जो पुत्र थे जो भजन किए थे उनके प्रसंग में रुद्र गीत का उपदेश उन्होंने शिव जी ने जो दिया था उस संदर्भ में, और एक सुत गोस्वामी स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में ही, तू लयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमताशिष। सत्संग की महिमा बताते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं, एक तरह एक भगवान के शुद्ध भक्त के एसोसिएशन से जो सुख मिलता है वह सुख एक तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए, तुलना करना है तो तुलना है तो तौलते हैं ना, तो एक पलड़े पर जो एक भक्त ड्राइव करता है, कोई व्यक्ति ड्राइव करता है हैप्पीनेस किसी भगवान के शुद्ध भक्त के एसोसिएशन में रहकर एक क्षण के लिए एक साथ रहा तो उसे सुख जो मिला जो उसे भक्ति प्राप्त हुई उसको तुला के एक पलड़े पर एक किनारे रख दीजिए, और दूसरे पर स्वर्ग का सुख, स्वर्ग जो यहाँ से बड़े बड़े अश्वमेध इत्यादि यज्ञ करके स्वर्गीय लोकों में लोग जाते हैं, तो जितना स्वर्ग का सुख है हजारों हजारों वर्ष तक रहकर जो सुख की अनुभूति व्यक्ति करता है वो सभी सुख को इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ तक ब्रह्मा जी का जो सुख है सत्यलोक में रहने का, ऊपर के लोकों में सबके सुख को इकट्ठा कर लीजिए, और उतना ही नहीं और पुनर्भव का सुख, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाने, जैसे मुक्त व्यक्ति हो गया है और वह जो जितना सुख की अनुभूति करता है उस सुख को भी ले लीजिए और तौलने का प्रयत्न कीजिए। तो शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि जो तौलने का प्रयत्न कर रहा है एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है, प्रथम कोटि का वह मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि जब कभी कभी होता है कि लगभग सामान्य वस्तु होती है तो उसमें पता नहीं लगता है कि वह भारी है कि वह, तो उसके लिए तुला का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि हिमालय पर्वत है और एक तरह से एक चींटी है तो हमको आपको पता लगा, आप तो ऐसे ही कह सकते हिमालय भारी है, ऐसा तौलते नहीं है ना कि तौल कर बताएंगे कि कौन चीटी भारी है कि हिमालय पर्वत भारी है। तो वो कहते हैं मैं तुलना करने का साहस नहीं कर सकता हूँ इस दोनों में, कि क्षण भर का सुख इतना ज़्यादा सुख है, इतना ज़्यादा सुख है कि उसके आगे मुक्ति का सुख है अथवा स्वर्ग का सुख है, पृथ्वी का जो कुछ सुख है वो एकदम तुच्छ है, नगण्य है। इसीलिए कहते हैं मर्त्या नाम किमुताशिषः। तो फिर जो पृथ्वी पर जो लोग भोगों को भोग कर सुख की अनुभूति करते हैं तो उसके तो तुलना करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किमुताशिषः। भगवत संगी संग, यहाँ पर साधु संग के लिए शब्द का प्रयोग किया है। भगवत भगवान, संगी मतलब कि उनमें जो आसक्त व्यक्ति है, संग मतलब आसक्त आसक्ति होता है, संग चाहे उनके साथ जो एसोसिएशन है। तो भगवत संगी संग से जो भगवान के भक्त का एसोसिएशन करता है उसमें जो सुख पड़ता है उसको हम इसे तुलना नहीं करते। तो वैदिक ग्रंथों में साधु संघ की बहुत बड़ी महिमा की गई है। चैतन्य महाप्रभु उसी क्रम में सनातन गोस्वामी को उपदेश देते यह कहते हैं किसी के जीव के हृदय में भक्ति का जो जन्म होता है उसका मूल कारण है, रूट कॉज है महत कृपा, साधु का संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। किसी के हृदय में कहीं भी आप देखते हैं कि वह उसमें भक्ति आई हुई है और भक्ति कर रहा है तो उसका मूल कारण है साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। वहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मूल भक्ति का जन्म होता है साधु संग से, और जो साधु संग का परिवर्धन अन्य दूसरे कारणों से भी होता है, श्रवण कीर्तन से और साधनों से होता है, भक्ति बढ़ती है, यहाँ तक कि उसमें प्रेम भी फलीभूत हो जाता है, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उस अवस्था में भी साधु संग महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा नहीं कि हमको प्रेम प्राप्त हो गया अथवा हमें भाव भक्ति की प्राप्ति हो गई, हमें आसक्ति प्राप्त हो गई, भगवान में आसक्ति हो गया, प्रेम हो गया, तब इसका महत्व कम नहीं हो जाता है साधु संघ का। प्रेम की प्राप्ति पर्यंत यदि वह पूरा पूरा शुद्ध कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो गई है, उसके हृदय में पूर्णतः कृष्ण प्रेम विकसित हो गया है, फिर भी उस अवस्था में भी उसके लिए आवश्यक है कि वह साधु संघ करे। उस अवस्था में साधु संघ मुख्य अंग के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। तो साधु संघ के से और अभी इसके विपरीत भी कहा गया है कि यदि कोई साधु संघ नहीं करता है, उसी क्रम में चैतन्य महापुरुष कहते महत कृपा बिने कोने कर्म भक्ति न। कोई व्यक्ति कहे ठीक है मैं साधु संघ नहीं करूँगा लेकिन अन्य साधन करूँगा, श्रवण कीर्तन करूँगा और भी जो भजन क्रिया का आचरण करूँगा, तो चैतन्य महाप्रभु कि ना, आपने जो साधु संग नहीं किया है, साधुओं का एसोसिएशन आपके प्राप्त नहीं है, तो कोई भी कर्म करते हैं वो भक्ति का स्तर, भक्ति के स्तर पर वह कर्म नहीं आ सकता है। वो भले पुण्य कर्म हो जाएगा, कोई जिसमें किसी भक्त के आनुकूल्य आपको प्राप्त नहीं है, भक्त का एसोसिएशन नहीं है, और जब आप कोई भी काम कर रहे हैं दूसरा, तो वह भक्ति के स्तर का कार्य नहीं हो सकता, उसे भक्ति नहीं कहा जा सकता है, वो पुण्य कर्म हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उस कर्म से जिसमें भक्ति, किसी भक्त का एसोसिएशन नहीं है, किसी भक्त की का अनुमोदन नहीं है, उसी कृपा प्राप्त नहीं है, तो उसे कृष्ण भक्ति दूर है, तो उस कृष्ण भक्ति तो दूर रहे, कृष्ण भक्ति तो प्राप्त नहीं होगी, उसे संसार क्षय भी मुक्ति भी नहीं प्राप्त होगी। दूसरे दूसरे कर्मों से यदि भगवान के भक्त का एसोसिएशन प्राप्त नहीं है, संगति प्राप्त नहीं है, तो उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ऐसे हम नीचे ही करते हैं, हमें थोड़ा बोलने में तकलीफ है। महत कृपा बेने कोने कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार न है क्षय, संसार भी क्षय नहीं हो सकता है। तो इसीलिए साधु संघ की बहुत महिमा कही गई है। इसके बिना हम लोग भक्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। भक्ति का बीज का जो बपन हमारे हृदय में होता है वह साधु लोग महात्मा लोग करते हैं, उनकी कृपा से होता है। और इसके बाद श्रवण कीर्तन से वो भक्तिलता बीज का पोषण होता है, वो पुष्पित और फलवती होती है भक्तिलता बीज। लेकिन साधु संघ एक महत्वपूर्ण अंग है। तो साधु संघ में हम बताया जा रहा है कि साधु संघ में होकर हमें श्रवण कीर्तन भक्ति के जो अंग हैं उनको हमें करना होगा, श्रवण और कीर्तन करना है। साधु के संघ में जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। इसके लिए प्रकारांतर से अभी बात बताई गई है कि यदि साधु सेवा कोई नहीं करता है तो वह भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। उसमें यह चांस नहीं, कोई अवसर नहीं है कि हम भगवान के भक्त ऐसे सुशील नहीं करते, सत्संग नहीं करते हैं, हम पर किसी भगवान के भक्ति की कृपा नहीं है तो हम लोग भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग को महत सेवाम द्वारम आहु विमुक्ते है। भगवान ऋषभ देव जब अपने पुत्रों को, जैसे भरत महाराज सबसे श्रेष्ठ थे, उनको उपदेश देते हैं, बताते महत सेवाम द्वारम आहु विमुक्ते है। विमुक्ति का, भक्ति प्राप्त करने का दरवाजा है, रास्ता है महत सेवाम। महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते है। और तमोस द्वारम जो सीताम संगी संग, भगवान के भक्तों की सेवा करना ही, करने से ही हमको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। एक भक्त का एसोसिएशन करने से, शुद्ध भक्त के निर्देशन में, उसके संरक्षण में रहकर जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, भक्ति योग का आचरण करते हैं, तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होते हैं, भक्ति की प्राप्ति होती है। इसके व्यतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है जिससे हम लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें। आप लोग जानते हैं जब महाराज रहुगण से बातचीत हो रही थी जड़ भरत जी की, तो रहुगण महाराज राजा थे, बड़े महान राजा थे, धार्मिक राजा थे, जिज्ञासु राजा थे। देख कितना भारी उनमें जिज्ञासा होगा कि सिंध देश के रहने वाले, अभी जो पंजाब है वहाँ के रहने राजा थे, सिंध सौबीर उधर पश्चिमी पंजाब के, और भगवान कपिल देव का आश्रम कलकत्ता के पास है गंगा सागर, तो यहाँ से वो पालकी पर चढ़कर राजकाज मंत्रियों को छोड़कर कितना सीरियस गंभीर होगा, चलो सत्संग करने चलते हैं। जा रहे थे भगवान कपिल देव से यह पूछने के लिए कि हम लोगों को किसकी शरण में जाना चाहिए, शरण कौन है। लोग कहते हैं देवी देवता के शरण में भी होना चाहिए, और भी बहुत सारे उपाय का, तो वो पूछने जा रहे थे भगवान कपिल देव से। एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा था, यह पूछना है कि किस शरण व्यक्ति कौन है, किसका हमें शरण लेना चाहिए। तो सीरियस होंगे तभी ना, एक राजा थे अपना काम धाम बंद करके, पैदल की पैदल तो वो तो नहीं चल रहे थे, लेकिन लोग पैदल ही ले जा रहे थे उसी रफ्तार से वहां जाना। तो उनसे बड़ी बातें हुई, बातों के क्रम में महाराज रहुगण बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि ये तो बहुत सिद्ध महात्मा है, इनमें कृष्ण भक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त है। तो उन्होंने पूछा, पहले उनको आश्चर्य हो रहा था, उसके पहले जड़ भरत जी बता दिए थे, अपने वर्णन करते करते बता दे, सारा ज्ञान बताए, भक्ति का रहस्य बताए, और बताते समय उन्होंने यह भी बता दिया कि इस भक्ति की प्राप्ति, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवान के भक्तों के चरण का चरण धूलि से अपना अभिषेक करने जो करता है उसको होती है। रहु गणेश तत्तपसा न जाति नचे जया निर्वपणाद गृहात्वा नक्षंदशा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। उन्हें श्लोक बताया कि हे महाराज रहुगण, रहुगणश तत्तपसा न जाति, भगवान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति तपस्या से नहीं होती है। रहुगणेश तत्तपसा न जाति, न चेजया इज्या, बहुत बड़े यज्ञ करने से, अश्वमेध इत्यादि यज्ञ करने से, राजस्व इत्यादि यज्ञ करने से ही भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। रहु गणेश तपसा न जाति न चेजया निर्वपणात गृहात्वा, अथवा घर से कुछ लोग निकल जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, विरक्त हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी, तो वो कहते हैं कि ना इससे भी नहीं होती है, और न तो घर गृहस्थी के नियमों का खूब लोग पालन करते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का ठीक से मैं पालन करूंगा, घर गृहस्थी के नियमों का पालन करूंगा तो एक दिन हमारे ही मन में वैराग्य हो जाएगा और फिर हमको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। एक अभी कुछ लोगों का सिद्धांत है, कर्मी लोग वर्णाश्रम धर्म का खूब बढ़िया से पालन पोषण करना चाहिए, ठीक से बच्चों का पालन है, उनका एजुकेशन देना है, धर्म कर्म करना है, तीर्थ यात्रा करना है, ऐसे करते करते एक दिन हमारे हृदय में वैराग्य हो जाए तो कदना न इसे भक्ति नहीं प्राप्त होगी, होने का प्रश्न ही नहीं। न क्षण दशा नहीं हो तब वेदाध्ययन करने से, ले लिए वेद का खूब पाठ कर रहे हैं, उसका उच्चारण सीख गए हैं बढ़िया से, उसे भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, जड़ भरत जन करना उसे भी नहीं होगी। जलाग्नि सूर्य अनेक देवी देवताओं की उपासना से हो सकती है भक्ति, तो रघुगण महाराज जड़ भरत के ना उसे भी नहीं होती, ये तो सब नहीं बताए होती कैसी है, ये तो आप बता दें नहीं होती है, इसे तो आखिर होती भक्ति कैसे प्राप्त होती, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, तो ये भी लिटरेरी ढंग से बताया गया कैसे होती है। जब हम किसी शुद्ध भक्त के चरण रज को लेकर धूलि लेते हैं, उसके चरण में जो धूलि है तो उसको लेकर और उसे अपना अभिषेक करते हैं, उसे स्नान करते हैं, यदि जब तक किसी भक्त का आश्रय नहीं लिया जाए, उसके चरण धूलि में जब तक चरण धूलि से जब तक स्नान नहीं किया जा सकता है, तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मतलब भक्ति की प्राप्ति होती है भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा से, स्पष्ट, और किसी भी साधन से नहीं हो सकता। आप हम लोग इस पर हम कह रहे हैं कितना सत्संग की, साधु संघ की, एसोसिएशन की आवश्यकता है। इसी प्रसंग में आप लोग जानते होंगे एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय बना हुआ था एक समय, इसकी जिज्ञासा थी, रिसर्च किया जा रहा था, बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे कि किसी के जीव के हृदय में कृष्ण भक्ति कैसे आती है, और यह रिसर्च का विषय इसलिए बन गया था कि प्रहलाद जो छोटे बच्चे थे, 5 वर्ष के बच्चे थे, उनके हृदय में भक्ति भरी पड़ी हुई थी, तो असुर समाज था, हिरण्यक्षिपु का समाज, बड़े बड़े संड और अमर्क जैसे बृहस्पति जी के शिष्य थे, बृहस्पति लगे हुए थे, पता लगा लिया जाए कि इसके हृदय में भक्ति कैसे आई हुई है। असुर समाज पूरा, वो लोग गुड सेंस, वो लोग समझते थे कि इसकी मति जो भ्रष्ट हो गई है कृष्ण कॉन्शियसनेस ने, वो खराब मानते थे, वो अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन वो जानते थे कि यह कृष्ण कॉन्शियस लड़का हुआ है, तो पता लगाना है कि कैसे हुआ है। तो बृहस्पति जी के शिष्य, शुक्राचार्य जी के शिष्य थे, संड और अमर, कितने शुक्राचार्य विद्वान हैं, भगवान भगवत गीता में कवियों का, विद्वानों का नाम लेते हैं तो उषना कवि शुक्राचार्य जी के नाम लिए हैं, कविनाम उषनाम, कवि में कवियों में विद्वानों में उषना कवि, उनके शिष्य संड और अमर, और भी पूरा असुर समाज हिरण्यक्षिपु का जो नजदीकी था, इसी को पता लगाना है कि प्रहलाद के हृदय में कृष्ण भक्ति कैसे आई हुई है, तो लोग पता लगा रहे थे उसे नष्ट करने के लिए, वो नहीं कि उसका वर्धन करना है, चाहे ऐसा सीख जाए तो हमें भी करना है, इसलिए पता लगा रहे थे उसको नष्ट करना है। तो यह प्रश्न था, रिसर्च का विषय था कि हम लोगों के लिए जानना चाहिए कृष्ण की भक्ति कैसे आती है, विषय है, रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है कि किसी के हृदय में कृष्ण भक्ति कैसे आती है। बहुत प्रयत्न किया गया, संड और अमर्क से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नैसर्गिकीयम बुधिरस्य राजन, उन्होंने साफ कह दिया, और बड़े बड़े विद्वान थे कि इस बच्चे को कभी शक था कि शायद कोई बता दिया होगा, यह भी संभावना थी कि कोई इसको लड़के को भक्ति के विषय में बताया हुआ, लेकिन छानबीन के करने से कोई पता नहीं लगता था कि प्रहलाद महाराज उस छोटी सी अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में किसी साधु के एसोसिएशन में रहे हैं, पता नहीं लगता था, पता भी नहीं था कि एसोसिएशन हुआ है कि नहीं, संघ हुआ है कि नहीं, तो वो लोग पता लगाने का प्रयत्न में लगे हुए थे, पता नहीं लगा। संड और अमर्क में जो निर्णय दिया कि जन्मजात इसमें भक्ति है वह गलत थियरी था। ऐसे किसी के हृदय में भक्ति नहीं उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप सोए थे तो बहुत रास्कल थे शाम को और जब